Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज के इस आधुनिक युग में क्या आध्यात्मिकता का कितना बड़ा रोल है, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके मोहन सिंघल भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी। भाई जी, आप ब्रह्म कुमारीज के साइंटिस्ट एज वेल एज इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने हासिल की है। कहीं ना कहीं आपका जो ये एक्सपीरियंस है इस जर्नी में, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है और साइंस भी है, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में कुछ बताइए कि इन दोनों के बीच की जो पूरकता है वो किस तरह से पूरी होती है।
हम जिस युग में जी रहे हैं, ये तो विज्ञान का युग है।
बिल्कुल,
चारों तरफ विज्ञान की उपलब्धियां हमें हर जगह देखने को मिलती हैं।
जी।
लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। जो आज के विज्ञान के फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस जिन्हें कहते हैं आइंस्टीन, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी विज्ञान जो है अध्यात्म के बिना, उन्होंने तो धर्म कहा था रिलीजन, लेकिन धर्म और आध्यात्मिकता को अक्सर करके लोग मिला दिया करते हैं
जी।
जो कि वास्तविकता उतनी नहीं है। तो धर्म विज्ञान ये दोनों में क्या भेद है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ही हैज टोल्ड दैट साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम। विज्ञान जो है आध्यात्मिकता के बिना लंगड़ा है और आध्यात्मिकता विज्ञान के बिना अंधी है। इसका भाव अंधे लंगड़े की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी कि दोनों हैंडीकैप्ड हैं, अंधा भी लंगड़ा भी, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, तो अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं।
अच्छा।
तो वो किस प्रकार से, अंधा और लंगड़ा जब आपस में सहयोग करें। अगर अंधा व्यक्ति तंदुरुस्त है लेकिन देखने में मजबूर है, दिखता नहीं, ऐसे लंगड़ा व्यक्ति है लेकिन चलने में वो मजबूर है, एक टांग नहीं है। तो अगर अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने ऊपर बैठा ले, लंगड़ा उसे राह दिखाता चलेगा और अंधा तेजी से चलता चलेगा, तो दोनों अपने मंजिल की तरफ सहज रीति से पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल।
तो भाव क्या है, विज्ञान भी जब बना था, विज्ञान का आविष्कार इसीलिए हुआ था मनुष्य का जीवन उसको सुख शांति से परिपूर्ण करे। तो बहुत साधन दिए हैं। आज जो भी चीज हम देख रहे हैं, आज का इंटरनेट है, मोबाइल है, विज्ञान के जो साधन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर, एवरीथिंग मनुष्य की सुख सुविधा के लिए है। तो ये बहुत जरूरी है और देखा गया है कि इसके द्वारा मनुष्य ने काफी हद तक सुख सुविधाएं उपलब्ध की हैं, हासिल की हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता का भी जन्म इसलिए हुआ था कि जब भी मनुष्य को शांति की इच्छा हो तो वो आध्यात्मिकता की गोद में चला जाए, धर्म की गोद में चला जाए और वहां से उसको अनुभूति हो इस चीज की। काफी हद तक दोनों ने मनुष्य की इन आवश्यकताओं को पूरा किया है। लेकिन विडंबना ये भी है जीवन में दोनों की, कि धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर आपसी झगड़े हुए हैं, खून खराबा हुआ है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। एक धर्म दूसरे धर्म का कितने हद तक विरोधी है हम सब देख रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान से जहां एक तरफ सुख सुविधाएं हासिल हुई हैं, वो दूसरी तरफ विज्ञान के साइड इफेक्ट इतने, आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा विज्ञान ने एटम बम, हाइड्रोजन बम्स, मिसाइल, विनाश के जितने साधन दिए हैं, तो ये भी मनुष्य के सम्मुख है। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों कंप्लीमेंट्री रोल को अगर अपनी अच्छी तरीके से फुलफिल करें, मिलकर कार्य करें, अंधे लंगड़े की तरह जैसे बात है, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ बहुत सुख शांति आनंद और सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं
जी।
तो आवश्यकता इस बात की है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बने। वास्तव में काफी हद तक पूरक है, लेकिन उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअल टेंपर हो उनका, और जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो थोड़ा साइंटिफिक टेंपर उनका हो। हाँ, तो दोनों अगर मिलकर के कार्य करेंगे तो एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। और वास्तव में आप देखेंगे कि साइंटिफिक लॉज भी जो है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल लॉज की तरह ही है। अच्छा। और साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लॉज जो हैं काफी हद तक ना एक दूसरे के पूरक है, मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस में एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अर्थात एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है न एनर्जी का विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन एनर्जी अपना रूप बदलती है। उसका रूप बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, पानी के अंदर भी एनर्जी है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे बिजली तैयार करते हैं तो एक बिजली अलग शक्ति है, एनर्जी है, उसका रूप बदल गया, लेकिन कहीं पर विनाश नहीं हुआ उसका। ऐसे ही आत्मा भी एक एनर्जी है, शक्ति है। तो आत्मा कभी, जब आत्मा आती है परमधाम से, मनुष्य शरीर धारण किया उसने, उसके बाद जन्म मरण के चक्र में जब आती है तो उसका रूप बदलता जाता है, एक जन्म से दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आत्मा का रूप, एनर्जी का रूप बदलता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सोल्स जो हैं, टोटल एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा निश्चित है। जितनी भी आत्माएं हैं, लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग जो है 700 करोड़ आत्माएं हैं, तो वो अपने अपने समय पर आके जन्म मरण के चक्कर में आती है, रूप बदलती हैं। तो या तो वो परम धाम में रहती हैं या यहाँ पर इस सृष्टि पर आके अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सोल्स रिमेन द सेम। ऐसे इस यूनिवर्स के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज सेम, वी आर ओनली कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
ये जो लॉ है ये किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, क्योंकि साइंटिफिकली तो हमने समझ लिया
जी,
लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उससे कैसे कनेक्टेड है ये?
वही तो मैं आपको बता रहा था, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फिक्स है, ऐसी आत्माओं की संख्या, आत्मा जो एनर्जी है वो फिक्स है, पूरा जितना टोटल नंबर ऑफ सोल्स है लगभग 700 करोड़ लगभग जैसा कहा जाता है। तो वो चाहे परम धाम में रहें चाहे इस सृष्टि पर आए, वो उनकी संख्या तो वही रहेगी। जब परम धाम से यहाँ आएंगी, परम धाम से माइनस हुई तो यहाँ प्लस हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सोल्स विल रिमेन द सेम इस ब्रह्मांड में, और इस प्रकार से अपना पार्ट बजाती हैं। हाँ, उनका रूप परिवर्तित होता रहता है। ऐसे ही वैज्ञानिक लॉ एक है बड़ा सिंपल, विज्ञान में एटम कहा जाता है और एटॉमिक एनर्जी जिससे होती है, उसी को आध्यात्मिक रूप में कहा गया है आत्मा। एटम और आत्मा काफी मिलते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, उसमें निगेटिवली चार्ज्ड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है जो न्यूक्लियस में रहता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है और वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो वेट प्रोवाइड करता है। तो इसकी तुलना अगर एटम आत्मा से की जाए तो इस रीति से की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तुलना मन से की जा सकती है। मन का काम है घूमना, सोचना, विचार करना। मन कभी भी बिना विचार के एक सेकंड भी रह नहीं सकता। तो घूमता ही रहता है मन, विचार करता रहता है, लेकिन मन को कंट्रोल कौन करती है? बुद्धि। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, उसके नेगेटिव चार्ज को, तो वो फ्लाई आउट नहीं करता, ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसे ही मन जो घूमता रहता है उसको कंट्रोल बुद्धि करती है, बुद्धि का पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए बुद्धि को निर्णय शक्ति कहा जाता है। मन के अंदर बहुत विचार आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, करूं ना करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, बुद्धि फिर निर्णय करके उसे अपना निर्णय देती है कि ऐसा करो, ये करो। और न्यूट्रॉन जब मन ने विचार किया, बुद्धि ने निर्णय दिया, तो फिर हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, उसका संस्कार बनता है। ऐसे ही जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, तो न्यूट्रॉन वो वेट प्रोवाइड करता है, और इसीलिए जो भी जैसे जब कर्म करते हैं वही सबको दिखता है, ना मन दिखता है ना बुद्धि दिखती है। ऐसे ही प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, और न्यूट्रॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है लेकिन वेट प्रोवाइड करता है, तो वो एटम जो है, जो आत्मा से तुलना की गई है आत्मा और एटम, फिर वो एटम, उस एटम के अंदर इतनी एनर्जी होती है, जैसे आत्मा के अंदर एनर्जी है ऐसे एटम के अंदर भी बहुत एनर्जी, और जब हम इस एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लॉइट, वही एटॉमिक एनर्जी एटम बम के रूप में या पॉजिटिव एनर्जी, उससे बिजली बनाते हैं, उससे ही कितनी प्रकार की एनर्जी, लेजर एनर्जी, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो सब ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक एनर्जी से ही ड्राइव करते हैं। तो इसीलिए कहने का भाव क्या है कि एक तरफ साइंटिफिक लॉ एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे ही दूसरी तरफ आत्मा मन बुद्धि संस्कार, और जब मन बुद्धि संस्कार एक ही पटरी पर आ जाते हैं, एटम को हम ब्रेक कर देते हैं, तो बहुत एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को हम एटॉमिक एनर्जी को या तो कंस्ट्रक्टिव यूज में लें या डिस्ट्रक्टिव यूज में एटम बम की फॉर्म में लें। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी जब, जिसे कर्मातीत अवस्था बोला जाता है, जिसे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बोली जाती है, तो मन बुद्धि संस्कार तीनों एक पैरेलल लाइन में जैसे चलते हैं। मन सोचता ही वो है जो बुद्धि निर्णय देती है, और बुद्धि जो निर्णय देती है वही हमारे कर्मों में आता है, तो ना हमारे मन एक्स्ट्रा उछलता है जिससे एनर्जी वेस्ट हो, तो मन बुद्धि संस्कार जब बिल्कुल एक हारमोनियस वे में कार्य करते हैं, तो उसके बाद यही कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई हेड हार्ट एंड हैंड, ये है, तो हेड का काम है सोचना लॉजिकली, हार्ट वो इमोशनली, और कर्म हाथ के द्वारा करते हैं। ऐसे जब ये तीनों मन बुद्धि संस्कार बिल्कुल एक लाइन में जैसे कार्य करते हैं, तो पूरी हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, और वो ही एनर्जी जो है कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाती है, न व्यक्ति का एक भी फालतू संकल्प चलता है, न बुद्धि फालतू की तरफ और दौड़ती है, न व्यक्ति के हाथों फालतू कर्म होते हैं। इस कारण से कितने लॉ अगर हम देखेंगे, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है जैसे
जी,
तो ये भी एक साइंटिफिक लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन,
तो कोई भी चीज होती है उसको जब एक्शन होता है तो वैसा ही उसमें से रिएक्शन होता है। आपने गेंद को फेंका तो गेंद टकराई, फिर उसके बाद गेंद उछलती, यही कर्मों का सिद्धांत है, कर्म फिलॉसफी है, कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे मिलता ही है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन अक्सर करके कई बार हम ये सुनने में आता है, भाई आप कहते तो हैं लेकिन फलाना आदमी तो बहुत खराब है, खराब कर्म कर रहा है लेकिन बड़ी अच्छे स्वर्ग की तरह जी रहा है, बहुत पैसे है, सब जीवन में लग्जरीज है। तो हम केवल एक ही जन्म पर दृष्टिपात करते हैं, ये जन्मों का जो रोल है ये अनेकानेक 84 जन्मों तक ये जो चलता रहता है, तो एक किसी जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो इसका उसका फल इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में अगर खराब कर्म कर रहा है तो हो सकता है इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में उसे उसका फल मिले, तो ये पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है।
बिल्कुल,
तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन ये भी एक लॉ है, इसमें लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ना, तो एक इफ एवरीथिंग कोई चीज है वो रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा वो कि वो चले, मानो कार है खड़ी हुई है तो वो खड़ी ही रहेगी जब तक उसे स्टार्ट करके गियर लगा के और उसे चलाएंगे नहीं, ये एक्सटर्नल फोर्स है तो वो चलना शुरू करेगी। और कोई चीज चल रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए मजबूर ना हो।
अच्छा,
हाँ,
तो ये इसका स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्शन है?
इसका ये कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से कि ये आत्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। आत्मा जब तक परम धाम में रहती है, जो आत्मा का स्टोर हाउस है, तो वो वहां पर रहेगी, और जब उसके कर्म उसे खींचेंगे, पहले किए हुए कर्म, तो वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह यूज करेंगे। यहाँ माता के गर्भ में उसका शरीर तैयार होगा, और वो माता पिता और वो संस्कार परिवार के वो सब जब खींचेंगे उसे, तो वो आत्मा उतरेगी और माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, उसका जन्म होगा और तब पार्ट बचाएगी। तो दैट वर्क्स एज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सोल। और इसी प्रकार से ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, और जब आत्मा अंत में बिल्कुल सारे कर्मिक अकाउंट चुकतु कर लेती है पूरा, तो वो फिर आत्मा वापस फिर परम धाम की तरफ जाती है। तो इस कारण से एक एक साइंटिफिक लॉ को अगर हम एनालाइज करेंगे, अनेक अनेक साइंटिफिक लॉ हैं, वो जब हम डिस्कस करते जाते हैं तो उसमें पता चलता है कैसे वो दे आर नॉट ओनली साइंटिफिक बट दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल लॉज। इसलिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वास्तव में एक दूसरे के काफी पूरक है।
बिल्कुल।
और पूरक होके अगर चलेंगे ना, लेकिन एक जीवन में ये भी विडंबना है कि वैज्ञानिक लोग जो है वो केवल उसी बात पर विश्वास करते हैं जिसको वो देखते हैं, जिसको वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले सकते हैं, फिजिकल प्लेन की बात करते हैं,
और स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल प्रूव नहीं कर सकते, वो तो फील करने की चीज,
महसूस करने की चीज।
बिल्कुल।
तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अब ये बड़ी खुशी की बात है, पिछले लगभग 40-50 वर्षों से साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के काफी निकट आए हैं, क्योंकि साइंस ने भी पहचाना है कि मेरी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और स्पिरिचुअलिटी ने भी जाना है कि उसकी क्या लिमिटेशन है। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें जीवन की बहुत समस्याओं का हल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे होते हैं जो बचपन में पैदा होते ही ना, कोई म्यूजिक में प्रवीण है, कोई गीता पाठ में बहुत एक्सपर्ट है, इस जन्म में उन्होंने करी भी नहीं है उसकी प्रैक्टिस, लेकिन बहुत प्रवीण है, तो वो इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि वो जन्म के साथ ऐसी क्या चीज है पिछले जन्म के साथ वो लाया है कि उसमें वो प्रवीणता आ गई है जो इस जन्म में उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, एक्सपर्ट हो गया। तो इसमें फिर आत्मा का रोल आता है कि जो आत्मा है वो अपने साथ संस्कार लेकर के आती है। पिछले जन्म में जरूर वो ग्रेट म्यूजिशियन रहा होगा या स्पोर्ट्समैन रहा होगा, इसलिए बचपन में यहाँ होते ही बचपन से ही वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज में, और वो संस्कार उसका जागृत हो गया। तो आत्मा की जो ये फिलॉसफी है ना, ये स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो ये पिछले जन्म का जब संस्कार लेकर के आत्मा आती है तो यहाँ पर एक्सपर्ट वो हो जाते हैं। ऐसे ही देखा गया है कि भाई कई बार डॉक्टर ये अनुभव करते हैं कि भाई पिछले जन्म की जब बातें याद रहती हैं किसी को, कोई कोई होते हैं
जी,
तो वो याद कैसे रहे कि जब कि उस व्यक्ति को जला दिया गया या गाड़ दिया गया या सब खत्म हो गया, तो ऐसी क्या चीज है कि जो आई और पिछले जन्म की बात, और जब उसे प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो देखा गया है कि वो बिल्कुल सही निकलती हैं।
बिल्कुल।
जो वो कह रहा है कि भाई मैं पिछले जन्म में ये था, यहाँ मेरा ये नाम था, यहाँ पर रहता था मैं, वो सब बातों को जब देखा जाता है सही पाया जाता है।
बिल्कुल।
तो ये आत्मा एक जो एक चैतन्य सत्ता है जो इस शरीर में रहती है यहाँ प्रकृति के बीच में, जिसके लिए कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न जलती है न कटती है, तो शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर ही पैदा होता है। तो इसीलिए जब कोई शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है लेकिन आत्मा उसमें से निकल जाना, यानी कि उसे मृत्यु कहते हैं।
अच्छा।
हाँ, तो आत्मा निकल गई लेकिन जा करके ना वो आत्मा अपने साथ इस जन्म के संस्कार ले गई, और जब अगले जन्म के लिए वो माता के गर्भ में उसने प्रवेश किया, उसके द्वारा जब वो नए पार्ट बजा रही है, तो पिछले जन्म की सब बातें
अधिक,
हाँ 99% याद नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को याद रहती हैं, छोटा बच्चा होता है कुछ महीने का, आप देखोगे कभी मुस्करा रहा है, कभी खुश हो रहा है अपने आप ही, कभी कभी रोता है, वो पिछली बातें याद करके।
अच्छा।
वो उसकी स्मृति में होती हैं, लेकिन तब उसके ऑर्गन्स छोटे होते हैं, बोल नहीं सकता वो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता, लेकिन अपने आप वो उन चीजों की अनुभूति करता है और सुखी या दुखी होता है, खुशी रहता है या दुख का अनुभव करता है। तो इसलिए ये जो भाव है, लेकिन जैसे ही बच्चा वो बड़ा होने लगता है, 2 साल, 1-2 साल, 3 साल का होता है, जब तक उसके ऑर्गन्स बड़े होते हैं तब तक वो उन बातों को भूल जाता है। और इस जन्म के जो माँ बाप हैं, जो उसका एटमॉस्फियर है, उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, पिछली बातें वो भूल जाता है। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की बात याद रहती है। तो ऐसे ही रीबर्थ की बात और नियर बॉडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह ना कभी परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन वगैरह, और कुछ पेशेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट दे आर डेड, लेकिन डॉक्टर, हाँ, लेकिन फुली डेड नहीं होते, और वो अनुभव सुनाते हैं। मैं देख रहा था कि मेरे ऊपर डॉक्टर्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ये बात चल रही थी, मैं गया गुफा में से निकला और साक्षी होकर मैं देख रहा था। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये बहुत व्यक्तियों के हैं, काफी लिटरेचर इसमें वो लिखा भी गया है। हाँ, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मैं भी जब अमेरिका गया था पहली बार 2000 में, तो मुझे एक किताब भेंट करी थी बहुत अच्छी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, तो वो थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। पढ़ने बैठा कि बहुत मोटी नहीं थी कि उसे पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के सो जाऊंगा रात को पढ़ने, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग किताब थी कि मैं उसे 2-3 बजे तक पढ़ता ही रहा।
अच्छा।
उसमें ये बताया गया था, एक डॉक्टर का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस था, और उसने ये लिखा था कि भई एक लड़की की हिस्ट्री लिखी थी, 28-29 साल की कोई लड़की थी, और उसे बहुत पानी से डर लगता था, और कई डॉक्टरों ने बहुत ट्रीटमेंट किया वो नहीं कर सके। तो वो केस जब इसके पास आया तो इसने ये हिप्नोटिज्म का उस पर प्रयोग किया। आप जानते हैं हिप्नोटिज्म वगैरह ना, तो उसको उस पर जब प्रयोग किया, उसे पहले जन्म में ले जाने की कोशिश करी, और फर्स्ट टाइम तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ डॉक्टर, वो शी कुड गो अप टू द एज ऑफ 5, देन उसने फिर फर्दर सेकंड सिटिंग 1-2 दिन के बाद की, तो शी कुड जंप टू हर अर्लियर बर्थ। हाँ, और वो अर्लियर बर्थ में जंप करके तब वो उसने बताया कि भाई मैं 9-10 साल की हूँ और बच्चों के साथ खेल रही हूँ, आई बिलोंग टू ए वेरी गुड फैमिली, मैं स्विमिंग पूल के पास आई हुई हूँ, तैरना सीख रही हूँ, और बस इसके पास खड़ी हूँ, किसी बच्चे ने मुझे थोड़ा पुश कर दिया, मैं गिर गई पॉन्ड में और मेरी डेथ हो गई जैसे। तो तब से पानी का डर का संस्कार जो मैं लेकर गई, तो आज मैं 29-30 साल की भी हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो पानी के डर का संस्कार वैसा का वैसा ही है। अच्छा। तो ये तो एक बात बताई थी बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें लगभग उसके 18-20 जन्मों का वर्णन था।
अच्छा।
अलग अलग उसने जो बताई थी, तो उन सब का सार ये है कि जरूर कोई ना कोई चैतन्य सत्ता है, आत्मा है, जो आत्मा अपने साथ संस्कार मरने के बाद भी शरीर को खत्म भी कर देते हैं, वो संस्कार लेके, उसे आत्मा कहो, सोल कहो, कॉन्शियसनेस कहो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जलती मरती कटती नहीं, और वो उसके बाद मृत्यु के बाद वो जाती है शरीर छोड़ के दूसरे जन्म में, फिर इस संस्कार के आधार पर ही ना वो कार्य करती है। इसीलिए आप देखो कई बार कोई बच्चों का जन्म बड़ी रॉयल फैमिली में, राजा के घराने में हुआ है, कोई बिल्कुल गरीब घराने में जहाँ रोटी भी नसीब नहीं होती, कोई बच्चा बचपन से ही अंधा लंगड़ा लूला हो गया है अपने पुराने कर्मों के आधार पर, और कोई बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है। तो ये सब पिछले क्यूमुलेटिव कर्मों के आधार पर ही हमारे नेक्स्ट बर्थ एंड रीबर्थ्स होते हैं।
जी,
तो ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का रोल कंप्लीमेंट।
भाई जी, जब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की आज, यंगस्टर्स तो कहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी जिंदगी को जीना है, आज का पल ही पल है। आप उसके एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट बोल रहे हैं कि हमारे और भी जन्म होते हैं, तो साइंस ने प्रूव किया है कि और भी जन्म होते हैं या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है?
नहीं, यही तो मैं बता रहा था आपको कि जो अमेरिका में जब मैं गया था, जो मुझे किताब भेंट की थी, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ए मेडिकल कॉलेज ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट, उनकी लिखी हुई थी।
अच्छा।
और उसमें उन्होंने शुरू में लिखा था कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये प्रयोग जो मैंने किया है
जी।
ये किन्हीं हद तक मेडिकल नॉलेज के कुछ पूरा सपोर्ट मेडिकल नॉलेज नहीं करती है इसे, लेकिन मैं इसे डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है। और किस प्रकार से मनुष्य व्यक्ति जो है ना अपने अर्लियर जन्म में मतलब जंप करके ना वो पिछले जन्मों की बात बता सकता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीबर्थ, हिप्नोटिक एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो ये जितनी बातें हैं ये सब स्पिरिचुअलिटी को मेडिकल साइंस के और नियर लाती हैं। दोनों इस बात को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो आज आवश्यकता यह है कि मेडिकल साइंस या विज्ञान भी आध्यात्मिकता का सहारा ले, आध्यात्मिकता विज्ञान का सहारा ले, तो दोनों मिलकर कई ऐसी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं लॉजिक के आधार पर, जिसको कि जनसाधारण बड़ी सहज रीति से मान सकता है।
बिल्कुल।
तो इसलिए दोनों को अपना अपना कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करना होगा।
भाई जी, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों अगर एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ों को जस्टिफिकेशन मिल सकता है जो कि आज उतनी ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, साइंस और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी अगर साथ आ जाए तो कई सारी बातों को जस्टिफिकेशन मिल सकता है जो कि अभी जस्टिफाइड नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ आ जाएं तो एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।